नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि विकसित भारत का स्वप्न तभी साकार हो सकता है जब देश के युवा नशामुक्त, स्वस्थ और अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित हों। वे आज दिल्ली विश्वविद्यालय में नशामुक्त परिसर अभियान को संबोधित कर रहे थे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये कार्यक्रम सरकार ने नशामुक्त भारत अभियान के अनुरूप है। उपराष्ट्रपति ने नशीले पदार्थों के खिलाफ आवाज उठाने और इसके उपयोग के प्रति जागरूकता फैलाने की आवश्यकता पर भी बल दिया।
Use of drugs by the youngsters, but today it is the need of the hour that we all must work together. Not only we keep ourselves free from drugs, we should not allow our friends, relatives, whomever we know, they should not get influenced by the drugs. That is the ultimate aim of ours today.
गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर स्थित मानसा नगरपालिका के लिए 260 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें सड़क संपर्क परियोजनाएं, स्वास्थ्य और जल परियोजनाएं शामिल हैं। उन्होंने मानसा के कला और वाणिज्य महाविद्यालय में नवनिर्मित खेल परिसर का भी उद्घाटन किया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर तीनों सेनाओं के संयुक्त तालमेल का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण था। इसमें कार्रवाई करने और हमलों का जवाब देने की पूरी आजादी थी। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद निर्णायक कार्रवाई करने का स्पष्ट फैसला लिया गया था। सेना प्रमुख ने कहा कि सशस्त्र बलों ने 9 में से 7 लक्ष्यों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया और पाकिस्तान की कार्रवाई का संतुलित जवाब सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लक्षद्वीप में बहुस्तरीय संयुक्त सैन्य सेवा चिकित्सा शिविर का उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित यह शिविर दूरदराज के इलाकों में नागरिकों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
भारतीय नौसेना लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड में एक मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल कैंप का आयोजन कर रही है। एक ही प्लेटफॉर्म पर मल्टीपल स्पेशलिटीज की उपलब्धता से कम्प्रिहेंसिव स्क्रीनिंग, अर्ली डायग्नोसिस, टाइमली मेडिकल एडवाइस एंड इंटरवेंशंस और मेडिसिन का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन संभव हो पाया है, जिससे लोकल पॉपुलेशन के लॉन्ग टर्म हेल्थ में सुधार आएगा।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की लोगो, थीम और वेबसाइट लॉन्च की। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत सम्मेलन के दौरान वैश्विक कल्याण के लिए ब्रिक्स देशों को एक साथ लाने का प्रयास करेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत इस सम्मेलन में मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करेगा। हमारी अध्यक्षता में सम्मेलन की विषय वस्तु लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और टिकाऊपन पर आधारित है। ये विषय वस्तु ब्रिक्स सदस्यों के बीच सहयोग बढ़ाकर संतुलित और समावेशी तरीके से साझा चुनौतियों से निपटने के विश्वास को दर्शाती है।
उत्तर प्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और स्वास्थ्य नवाचार सम्मेलन लखनऊ में चल रहा है। सम्मेलन के दूसरे दिन सदस्य देश की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए AI उपकरणों का उपयोग कर स्वास्थ्य सेवा में AI के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं। उद्घाटन समारोह के दौरान कल इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा कि देश डिजिटल प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वैश्विक प्रणेता के रूप में लगातार उभर कर सामने आ रहा है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने बांग्लादेशी अवैध आप्रवासन रैकेट की जांच अपने हाथ में ले ली है। इससे पहले दिल्ली पुलिस की विशेष इकाई इस मामले की जांच कर रही थी। अधिकारियों ने बताया कि NIA ने पिछले सप्ताह औपचारिक रूप से मामले की जिम्मेदारी लेने के बाद एक नई FIR दर्ज की है। ये कार्यवाही गृह मंत्रालय के निर्देशों के बाद की गई है और एजेंसी ने अपनी जाँच शुरू कर दी है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले के सरलांगपल्ले गांव में कल रात भीषण आग लगने से 38 कच्चे मकान जलकर खाक हो गए। इस घटना में कई परिवार बेघर हो गए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने घटना की समीक्षा की। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आज दोपहर में गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।